नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। सबसे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रामलीला और दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ आयोजन की तैयारियों से संबंधित बैठक की। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कैंपस टैंक का उद्घाटन किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली सरकार की पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहयोग की घोषणा। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राष्ट्रीय राजधानी की रामलीला और दुर्गा पूजा समितियों के सदस्यों के साथ आगामी आयोजन से जुड़ी तैयारियों के संबंध में विशेष बैठक की। इस बैठक में दिल्ली के बिजली मंत्री आशीष सूद, कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा के अलावा कई विधायक, दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव, डीडीए उपाध्यक्ष, एमसीडी कमिश्नर, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार इन समितियों को आयोजन के लिए 1200 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि आयोजन स्थलों पर सफाई, फॉगिंग, पानी के टैंकर, स्वास्थ्य सुविधाएं, एम्बुलेंस, शौचालय, फायर टेंडर और पुलिस व्यवस्था के भी सुचारू इंतजाम किए जाएंगे।
सभी रामलीला समितियों को दिल्ली सरकार 1200 यूनिट बिजली अपनी ओर से उपहार देगी। ये दिल्ली की सभी रामलीला समितियों के लिए भी और दुर्गा पंडालों के लिए भी यही चीजें लागू रहेंगी। इसके साथ में हम शौचालयों की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था, हेल्थ कर्मियों की व्यवस्था, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, हर प्रकार की जो एनओसी है, सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिल्ली की रामलीलाओं के सदस्यों को कहीं भी यहां वहां बटन की जरूरत नहीं है। दिल्ली सरकार सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से दिल्ली की रामलीला समितियों को परमिशन एनओसी उपलब्ध कराएगी।
नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने राजधानी के एनडीसीसी कन्वेंशन सेंटर में आज शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया। एनडीएमसी ने बताया कि इस शिविर में विभिन्न विभागों से जुड़ी 95 शिकायतें प्राप्त हुई। परिषद के अनुसार विभिन्न विभागों से संबंधित अधिकारियों ने जन शिकायतों पर चर्चा की और उनका समाधान किया। इस महीने की 17 तारीख से शुरू होने जा रहे सेवा पखवाड़ा अभियान के अंतर्गत आज भाजपा केंद्रीय कार्यालय में कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री सुनील बंसल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा सहित अन्य भाजपा नेताओं ने भाग लिया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने देश के युवाओं को सशक्त बनाने के लिए नई दिल्ली में आज कैंपस टैंक का उद्घाटन किया। महत्वपूर्ण स्टार्टअप लॉन्च पैड देश की अगली पीढ़ी के संस्थापकों को अपना स्टार्टअप स्थापित करके प्रारंभिक कैरियर का पेशेवर अवसर प्रदान करेगा। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि 6 मिलियन डॉलर के कोष पूल से संचालित अखिल भारतीय पहल युवा नव प्रवर्तकों को अपने स्टार्टअप विचारों को प्रस्तुत करने और धन सुरक्षित करने के लिए मंच के रूप में सेवा प्रदान करेगी। उन्होंने राष्ट्र को एक वैश्विक स्टार्टअप केंद्र में परिवर्तित कर युवाओं की भूमिका पर बल दिया। श्री सिंह ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में युवाओं के योगदान का भी उल्लेख किया। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय दिल्ली ने आज अपना 12वां दीक्षांत समारोह मनाया। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एनएलयू दिल्ली के कुलाधिपति न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद उपस्थित रहे। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने दीक्षांत भाषण में विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए कहा कि ये उपाधि केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा और समाज की सेवा का आह्वान है। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि विद्या और धर्म के अभिन्न संबंध पर बल देते हुए कहा कि विधि की शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी समाज और संविधान के प्रति विशेष दायित्व निभाने के लिए तैयार रहें।
एजुकेशन लिबरेट्स अस from ignorance, prejudice and narrowness. It gives us courage to ask not just what is, but also what ought to be. Chanakya said, education is our best friend. It beats beauty and youth. Looking around, I can safely say some of you will now have to rely more on your education than other things.
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं. दिल्ली में यमुना नदी का जल स्तर घट रहा है, लेकिन यह अब भी खतरे के निशान से ऊपर है. जानकारी के अनुसार पुराने रेलवे पुल पर जल स्तर 207 मीटर से घटकर 206.36 मीटर हो गया है. अब भी कुछ क्षेत्रों में बाढ़ जैसी स्थिति है. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों और राहत शिविरों में आश्रय दिया गया है. अधिकारियों के अनुसार दिल्ली में 38 स्थानों पर राहत शिविर लगाए गए हैं. इनमें 27 स्थानों पर कुल 522 टेंट उपलब्ध हैं. इस बीच दिल्ली सरकार ने पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहयोग राशि देने का निर्णय लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस कठिन समय में दिल्ली की जनता और सरकार पंजाब में आपदा से जूझ रहे लोगों के साथ खड़ी है. उन्होंने प्रभावित परिवारों के जल्द से जल्द विपत्ति से निकलने और सुख शांति तथा समृद्धि की प्रार्थना की.
दिल्ली सरकार की ओर से हम पंजाब सीएम रिलीफ फंड में 5 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा करते हैं. हम उन्हें चाहते हैं कि पंजाब जल्दी इन विकट स्थितियों से निकल करके बाहर आए. वहाँ का हर नागरिक राहत महसूस करे. वहाँ के लोगों को फिर से अपनी दिनचर्या, अपना घर परिवार मिल पाए और जो परिस्थितियाँ वहाँ चल रही है पानी के कारण से वो सब ठीक हो पाए. मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से बात भी की थी कि किसी भी प्रकार की और भी कोई सहायता उनको हमसे चाहिए, हम उनके लिए तैयार.
सरस आजीविका मेला 2025 राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में जारी है. इस मेले में प्रदर्शकों द्वारा लगभग 400 स्टॉल लगाए गए हैं. हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज छुट्टी के दिन मेले में लोग बड़ी संख्या में घूमने पहुंचे. ये पहली बार है जब इस मेले का आयोजन दिल्ली में किया जा रहा है.
कल से शुरू हो रहे सरस आजीविका मेला में आज वीकेंड पर लोग बड़ी संख्या में अपने दोस्तों और परिवारों के साथ पहुंच रहे हैं. भारत की विविधता को समेटे हुए यह मेला हर राज्य की संस्कृति, कला और खान पान को प्रस्तुत कर रहा है. मेले में रंग बिरंगे स्टॉल पर कहीं कश्मीरी शॉल लोग खरीद रहे हैं तो कहीं मिट्टी की खूबसूरत मूर्तियाँ लोगों का मन मोह रही हैं. इस वर्ष के मेले की थीम लखपति दीदी है. मेले में हस्तशिल्प, हस्तकला और घरेलू उत्पादों के साथ साथ यहाँ का इंडियन फूड कोर्ट भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. मेले में प्रतिदिन आयोजित किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं. आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मेले में घूमने आए एक आगंतुक ने बताया कि उन्हें मेले में अलग अलग राज्यों से जुड़े सामान एक ही जगह पर मिल रहे हैं और मेला उन्हें विभिन्न संस्कृतियों को और बेहतर जानने में मदद कर रहा है. वहीं एक प्रदर्शक ने बताया कि वह कई वर्षों से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है और इसके जरिए ये बड़ी संख्या में लोग उनका सामान खरीद रहे हैं. 22 सितंबर तक चलने वाले इस मेले में आगंतुक प्रतिदिन सुबह 11 बजे से रात 9 बजे तक घूमने के लिए जा सकते हैं. प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर.
इस बीच दिल्ली समेत देश के विभिन्न हिस्सों में 10 दिनों तक चलने वाला गणेश उत्सव आज मूर्ति विसर्जन के साथ सम्पन्न हो रहा है.
वक्रतुंड महाकाय सूर्य को निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा.
श्रद्धालु भगवान गणेश की प्रतिमाओं को अपने घरों या सामूहिक मंडपों में विराजमान करते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार 1.5 दिन, 3, 5, 7 या पूरे 10 दिन उनकी पूजा अर्चना करते हैं. बहुत से श्रद्धालु आज अनंत चतुर्दशी के दिन ही बप्पा को भावपूर्ण ढंग से विदा करते हैं और अगले बरस उनके आगमन की प्रतीक्षा में जुट जाते हैं. हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के व्रत और विशेष पूजा करने का भी विधान है. जैन धर्म में भी अनंत चतुर्दशी या अनंत चौदस का विशेष महत्व है. आज के दिन ही मुख्य जैन त्यौहार पर्युषण पर्व का अंतिम दिन होता है.
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं. ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं. अंतर्राष्ट्रीय अनुवांशिक अभियांत्रिकी और जैव प्रौद्योगिकी केंद्र ने आज नई दिल्ली में बायो E3 पॉलिसी की पहली वर्षगांठ के अवसर पर जलवायु अनुकूल कृषि और स्वच्छ ऊर्जा पर संस्थान उद्योग संवाद का आयोजन किया। एक रिपोर्ट।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि ये कार्यक्रम कृषि और स्वच्छ ऊर्जा में नवाचारों को प्रयोगशाला से बाजार तक पहुंच प्रदान करने के लिए प्रमुख राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में उद्योग जगत के प्रतिनिधियों ने उभरती प्रौद्योगिकियों की क्षमता और जैव अर्थव्यवस्था को गति देने के प्रयासों पर चर्चा की। बायो E3 पॉलिसी जैव प्रौद्योगिकी को अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार के साथ एकीकृत करने की सरकार की एक प्रमुख पहल है। नवाचार स्थिरता और समावेशी विकास को बढ़ावा देते हुए वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिछले वर्ष केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति को मंजूरी दी गई थी। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वस्तु और सेवा कर सुधारों के जरिए मध्यम वर्गीय परिवारों को बड़ी राहत और बहुमूल्य उपहार मिला है। श्री वैष्णव ने आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए ये बात कही।
माननीय प्रधानमंत्री जी की जो मिडिल क्लास परिवारों के प्रति निष्ठा है, वो निष्ठा समय समय पे हमको दिखाई दी है। कैसे इनकम टैक्स में एक बड़ा सुधार करके 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स की मध्यम वर्गीय परिवारों को छूट मिली, वैसे ही एक बहुत बड़ा GST में रिफॉर्म्स करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिडिल क्लास परिवारों को एक बहुत बड़ी राहत दी है।
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस कार्रवाई में 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास 5 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थ, 3 गाड़ियां और 2 पासपोर्ट बरामद हुए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी थाईलैंड से मादक पदार्थ की तस्करी कर दिल्ली NCR लाते थे और फिर विभिन्न शहरों में इसकी तस्करी किया करते थे। कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने आज एक समिति का गठन किया है। ये वर्तमान प्रक्रियाओं की समीक्षा कर और कम मूल्य के दावों के मामलों में दस्तावेजीकरण को सरल बनाने के लिए सुधारों की सिफारिश करेगी। इस कदम से समय सीमा में उल्लेखनीय कमी आने, पारदर्शिता में सुधार और निवेशकों को परेशानी मुक्त सेवाएं मिलने की उम्मीद है। ये सुझाव 5 लाख रुपये तक की प्रतिभूतियों, 15 लाख रुपये तक की DMAT प्रतिभूतियों और 10,000 रुपए तक के लाभांश मूल्य वाले दावों पर लागू होंगे। इस सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में 1% से अधिक की बढ़ोतरी रही। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स पूरे सप्ताह के दौरान 901 अंक बढ़ा और 80,711 पर रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 314 अंक की बढ़त के साथ 24,741 पर बंद हुआ। बाजार में बढ़ोतरी की मुख्य वजह GST दरों में कटौती, मैन्युफैक्चरिंग PMI का 17 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचना और घरेलू संस्थागत निवेशकों द्वारा बड़े पैमाने पर खरीदारी रही। विस्तारित बाजार में BSE मिड कैप इंडेक्स में लगभग 2% और BSE स्मॉल कैप इंडेक्स में 2.5% का उछाल दर्ज किया गया। और अब बात मौसम की। राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज दिनभर मौसम साफ रहा, वहीं कुछ इलाकों में छिटपुट बारिश भी देखने को मिली। दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 34.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की रामलीला और दुर्गा पूजा समिति की सदस्यों के साथ आयोजन की तैयारियों से संबंधित बैठक की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में कैंपस टैंक का उद्घाटन किया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर घटा लेकिन अब भी खतरे के निशान से ऊपर। दिल्ली सरकार की पंजाब मुख्यमंत्री राहत कोष में 5 करोड़ रुपए की सहयोग की घोषणा। और दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश कर 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।